नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्र में कल नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर। भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चुनाव चिन्ह मांगने वाले राजनीतिक दलों से आवेदन आमंत्रित किए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रतिष्ठित मीडिया हस्ती और इनाडू समूह के संस्थापक रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया और आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को और अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन प्रांगण में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। श्री मोदी ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में एनडीए के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा जिसमें कहा गया था कि श्री नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता निर्वाचित किया गया है। एनडीए के घटक दलों की ओर से समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा गया। राष्ट्रपति भवन के बाहर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए एक सुदृढ़, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार का गठन करेगी।
हम भारतवासी खुद नसीब हैं, इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं। ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान आना बहुत तेज गति से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा, देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।
श्री मोदी ने कहा कि लोगों ने एनडीए सरकार को एक और अवसर दिया है और ये 18वीं लोकसभा नवीन और युवा ऊर्जा का स्रोत है। उनकी सरकार देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगी। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार देश का तेज गति से विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले दो टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है, 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे।
हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पड़ोसी देशों के विभिन्न नेताओं को आमंत्रित किया गया है। पड़ोसी राज्यों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में भाग लेने के लिए नेता राजधानी पहुंचने लगे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मोइज्जू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनॉथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे भी समारोह में भाग लेंगे। ये नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कल शाम आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में विश्व नेताओं की उपस्थिति भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाती है। दिल्ली पुलिस ने शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त की है। दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इसने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिल्ली के ऊपर पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर्स, मानव रहित हवाई वाहन और गुब्बारे सहित उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह रोक अगले दो दिनों तक लागू रहेगी। आनंद कुमार के साथ मैं पल्लवी परमार, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
राष्ट्रपति भवन में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह आज और इस महीने की 15 और 22 तारीख को आयोजित नहीं होगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि यह निर्णय राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह तथा दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संबोधन की तैयारियों के कारण लिया गया है। कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक राजधानी नई दिल्ली में सम्पन्न हो गई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। बैठक में श्री खड़गे ने पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों को चुनाव जीतने पर बधाई दी। श्री खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लोगों का अपार समर्थन मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ संसद के अंदर और बाहर एकजुट होकर कार्य करेगी। आज शाम को नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों और राज्यसभा सांसदों वाले कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक होगी। ओडिशा में सोमवार को राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। उसी दिन सुबह भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसके बाद भुवनेश्वर के जनता मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को अभी नए मुख्यमंत्री के नाम का निर्णय लेना है और सबकी निगाहें दिल्ली की ओर हैं, जहां पार्टी के संसदीय बोर्ड में इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के 78 सदस्यों वाले विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के दो केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में नेता का औपचारिक रूप से चयन किया जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू 12 जून को सुबह 11:27 पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह विजयवाड़ा के पास होगा। सूत्रों के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के वरिष्ठ नेता और पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री भाग ले सकते हैं। श्री नायडू चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चुनाव चिन्ह मांगने वाले राजनीतिक दलों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में निर्वाचक दल को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करने से पहले एक ही चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करना होगा। लद्दाख में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद करगिल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉ मोहम्मद जफर अखून ने जिले में शैक्षिक ढांचे को बढ़ाने के लिए रणनीति पर चर्चा करने के परिषद सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नौकरी के बदले जमीन मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ अंतिम आरोप पत्र दायर किया है। इस पर विशेष अदालत 6 जुलाई को सुनवाई करेगी। इससे पहले 4 अक्टूबर 2023 को न्यायालय ने नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाला मामले में एक नई चार्जशीट के आधार पर पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को जमानत दे दी थी। एक अन्य मामले में सीबीआई ने दिल्ली के शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा 6 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेंगी। कविता की न्यायिक हिरासत 21 जून तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 3 लोग मारे गए हैं और 6 घायल हो गए। हादसा आज तड़के 3:38 पर हुआ। अग्निशमन विभाग ने कहा है कि सुबह फोन कॉल से घटना की जानकारी मिलने पर 14 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना गैस की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइनों में रिसाव के कारण हुई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। केरल के एर्नाकुलम जिले के अंगमाली में आज सुबह एक घर में आग लगने से एक ही परिवार के चार लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में एक 8 साल का और एक 5 साल की बच्ची तथा उनकी मां शामिल है। सूत्रों ने आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट होने का संदेह जताया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए हैं। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पद्म विभूषण से सम्मानित श्री राव का दृष्टिकोण सामाजिक उत्थान में निहित था। राष्ट्रपति ने उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
इनाडू समूह के संस्थापक और मीडिया की जानी मानी हस्ती रामोजी राव का आज सुबह हैदराबाद में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। श्री राव पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। इस महीने की 5 तारीख को उन्हें नानक रामगुड्डा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रामोजी फिल्म सिटी में उनके आवास पर परिजन और प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। रामोजी राव इनाडू ग्रुप, मार्गदर्शी चिटफंड, रामोजी फिल्म सिटी और प्रिया फूड्स सहित अनेक कारोबारों का प्रबंधन करते थे। एक समय में तेलुगु भाषी क्षेत्रों में उनके नेतृत्व में इनाडू प्रमुख मीडिया समूह था और राजनीति में वे काफी प्रभावशाली थे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
न्यूयॉर्क में नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर एक रोमांचक मुकाबला,
जब होगी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने।
ICC T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में 9 जून को भारत पाकिस्तान मैच का आंखों देखा हाल
सुनिए सिर्फ आकाशवाणी नेटवर्क पर।
T20 क्रिकेट विश्व कप की खबरों के साथ हैं शक्ति प्रताप।
दिल में है बच्ची का जज्बा, दिल का मान बढ़ाना है।
ICC क्रिकेट पुरुष T20 विश्व कप में आज सुबह अमेरिका के टेक्सास में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 124 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश ने 19 ओवर में 8 विकेट पर 125 रन बनाकर जीत हासिल की। दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने उलटफेर करते हुए न्यूजीलैंड को 84 रनों से हरा दिया। गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 15 ओवर 2 गेंदों में 75 रन पर सिमट गई। कल रात न्यूयॉर्क में कनाडा ने आयरलैंड को 12 रनों से हरा दिया। कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 137 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम 7 विकेट पर 125 रन ही बना सकी।
दिल में है बच्ची का जज्बा, दिल का मान बढ़ाना है।
फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज शाम शीर्ष वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्वियातेक और इटली की जैस्मीन पाओलिनी के बीच मुकाबला होगा। उधर पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल स्पेन के कार्लोस अल्कराज का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। इससे पहले भारत ने जर्मनी को 3-0 से हरा दिया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय योग अभ्यास के बारे में जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेगा। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। आयुष मंत्रालय ने एक योग गीत तैयार किया है, सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इसे साझा किया जा रहा है।
सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन, कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र में कल नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर। भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चुनाव चिन्ह मांगने वाले राजनीतिक दलों से आवेदन स्वीकार करने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रतिष्ठित मीडिया हस्ती और इनाडू समूह के संस्थापक रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया और आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को और अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।